الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تو آج مجلس نمبر 41 ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا مختصر راستہ، شارٹ کٹ راستہ کیا ہے، مختصر راستہ. اس سے پہلے جو باتیں گئی کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے ضعیف بھی محروم نہیں رہے گا، جہاں قوی پہنچے گا اسی درجے پر، بلکہ اس سے آگے کے درجے پر بھی ضعیف پہنچ سکتا ہے. جی، دیکھو، گھر میں بال بچوں کے ساتھ ذکر کرنا، حضرت والا نے ارشاد فرمایا، اگر بال بچوں کے ساتھ گھر رہ کر ذکر نہ ہوتا ہو، گھر میں رہ کر بال بچوں کے ساتھ رہ کر ذکر نہ ہوتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بالقصد ایسا اہتمام کرے کہ اگر گھر کے علاوہ دوسری جگہ میسر ہو تب بھی گھر ہی میں ذکر ہوگا، گھر ہی میں ذکر کرے، تب بھی گھر ہی میں ذکر کرے. گھر کے علاوہ دوسری جگہ اگر ملے بھی تو بھی کیا کرنا ہے، گھر ہی میں ذکر کرے. رائفین کا معمول ہے کہ گھوڑا جس چیز سے چمکتا ہو اس سے دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیشہ کی مصیبت ہے، بلکہ ایسی چیز کے سامنے آنے اور دیکھنے کا خوگر کرتے ہیں یہاں تک کہ چمک نکل جاتی ہے. یعنی گھوڑا جس چیز سے بھڑکتا ہے، بدکتا ہے، چمکتا ہے، تو پھر اسے دور کرنے کا اہتمام اسے دور رکھتے. البتہ جس جگہ امر معنی ایسا ہو کہ اس سے ملاسبت کی ضرورت نہ ہوگی، وہاں اسلم یہی ہے کہ اس معنی سے مباعدت اختیار کی جائے. خوب سمجھ لو، یہ تو حضرت کا ملفوظ ہے، اب اس کی تفسیر سمجھو. اس ملفوظ میں حضرت والا یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ذکر کرنے سے دو قسم کے موانع ہوتے ہیں، ذکر کرنے سے دو قسم کے موانع ہوتے ہیں، یعنی رکاوٹیں ہوتی. بعض اوقات ذکر کرنے سے دو قسم کی رکاوٹ ہوتی. جی، ایک رکاوٹ تو عارضی قسم کی ہوتی ہے، اگر اس معنی کو دور کر دیا، یعنی اس رکاوٹ کو دور کر دیا، تو اس سے معمولات زندگی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا. اس صورت میں تو مناسب یہ ہے کہ آدمی اس رکاوٹ کو دور کر لے. مثلا ایک شخص ایک گھر میں رہتا ہے اور اس گھر کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں شور و شغب نہیں رہتا ہے، بچے کھیلتے کودتے ہیں اور شور مچاتے پھرتے ہیں. اگر آدمی اس جگہ پر بیٹھ کر، لیکن گھر میں ایک جگہ ایسا ہے، ایک کونا ایسا ہے کہ جہاں پر بچے شور نہیں کرتے، باقی تو پورے گھر میں بچے شور کرتے ہیں، تو اگر آدمی اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرے گا تو اس کو جمعیت خاطر اور سکون حاصل نہیں ہوگا. یعنی اگر بچے کھیل رہے ہو، کود رہے ہو، شور مچا رہے ہو، تو وہاں بیٹھ کر اگر ذکر کرے گا تو اس کو یکسوئی میں نہیں ملے گی. تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ ذکر کرنے کے لیے گھر کے اندر ایسی جگہ کا انتخاب اور چوائس کرے جہاں شور و شغب زیادہ نہ ہو، اور دوسری جگہوں کے بنسبت وہاں نسبتاً سکون ہو. یہ معنی ایسا ہے، یہ رکاوٹ ایسی ہے کہ اس کو دور کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس معنی کو دور کرنا کر دینا ممکن ہے کہ گھر میں کونا ہو تو اس میں بیٹھ کر ذکر کر لے، کوئی حرج نہیں. تو ذکر کرنے میں دو رکاوٹیں آتی، ایک رکاوٹ تو عارضی، جیسے بتایا کہ یہ وقتی ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں تو تم ایسے روم میں جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ذکر کو پورا کر لو، تو اس صورت میں گھر میں ہی ذکر کرے. لیکن اگر مانے ایسا ہے، رکاوٹ ایسی، یہ رکاوٹ تو ایسی ہے کہ جس میں ہم دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر رکاوٹ ایسی ہے کہ انسان کے لیے اپنی طبعی زندگی میں اس معنی سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، مثلاً پورا گھر شور و شغب کا شکار ہے، پورے گھر میں بچے کھیلتے ہیں، شور ہو رہا ہے اور ہر وقت بچے شور مچاتے رہتے ہیں، اور گھر چھوٹا ہے جس کی وجہ سے گھر میں کوئی کونا، کوئی عافیت کی جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ شخص ذکر کے وقت گھر چھوڑ کر مسجد میں یا کسی دوسری جگہ چلا جائے اور وہاں جا کر ذکر کرے، یا گھر میں ہی بیٹھ کر ذکر کرے؟ یہ سوال ہے، بڑا عجیب سوال ابھی تو. ہاں، تو گھر چھوڑ کر مسجد میں یا کسی دوسری جگہ چلا جائے، وہاں جا کر ذکر کرے، یا گھر میں ہی بیٹھ کر ذکر کرے، تو ایسے شخص کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص گھر میں بیٹھ کر ذکر کرے. کیا بتا رہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ذکر کرے، گھر چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ یہ ایک مستقل عمل ہے. کب تک گھر چھوڑ کر جائے گا؟ ایک دن دو دن تو سنبھل جاوے، چلو یہاں تو روزانہ کا عمل ہے، تو اب کب تک گھر چھوڑ کر جائے گا؟ اس لیے گھر میں ہی ذکر کرے، اور نفس کو اسی تشتت کی فضا میں، یعنی وہ جو پریشانی ہو رہی ہے اسی کے ماحول میں ذکر کرنے کا عادی بنا دے. کیا بات کہی! ہاں 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 ہمارا کمنی بھی سے. اس لیے گھر میں ہی ذکر کرے، اور نفس کو اسی تشتت کی فضا میں ذکر کرنے کا عادی بنائے، اور اسی پراگندگی کی فضا میں ذکر کرنے کا عادی بنائے. اس کے لیے مسجد میں جا کر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. عجیب بات ہے. ہاں، عجیب عجیب بات بتائی. اللہ، دیکھو یہ بھی عام سوال ہے کہ بھائی یہ شور مت ہے، چلو وہاں جا کر ذکر کرے، تو گھر کے کونے میں جا کر کرے تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کو چھوڑو مت. گھر چھوٹا ہے یا کوئی ایسا ہے تو گھر کو نہ چھوڑے، کہ اس لیے ہمیشہ کا عمل ہے، اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دے. شور ہو رہا ہو اور اپنا کام کر رہے ہو. اب ایک مثال سے بات سمجھو. اس کی بڑی اچھی مثال حضرت والا نے یہ دی کہ یہ جو گھوڑا سدھانے والے اور پالنے والے ہوتے ہیں، گھوڑا کو تربیت کرنے والے گھوڑے کی، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب گھوڑا کسی خاص چیز کو دیکھ کر بھدکتا ہے، کبھی کبھی جانور کوئی چیز کو دیکھ کر بھڑکتا ہے نا، بھدکتا ہے، تو فرض کرے کہ گھر میں گھوڑا بھی ہے، گھر میں گھوڑا بھی ہے اور کتا بھی ہے. اب گھوڑا کتے کو دیکھ کر بھدکتا ہے، گھوڑا کتے کو دیکھ کر بھدکتا ہے، یا کوئی تو بڑا رکھا ہے اس کو دیکھ کر گھوڑا بھدکتا ہے، یا کوئی توبڑا رکھا ہے یعنی کچھ اور چیز اس طرح جسے وہ بھدکتا ہے. تو سائسوں کا معمول یہ ہے، گھوڑے کے پالنے والے جو ہوتے ہیں اس کا معمول یہ ہے کہ جس توبڑے کو دیکھ کر، جس چیز کو دیکھ کر گھوڑا بھدک رہا ہے، تو گھوڑے کو رام کرنے کے لیے، یعنی اس کو فرما بردار کرنے کے لیے، اس توبڑے کے سامنے سے نہیں ہٹاتے، اس کے سامنے سے جسے وہ بھدکتا ہے اس کو سامنے سے نہیں ہٹاتے، کیونکہ آج وہ اس توبڑے سے بھدک رہا ہے اور تم نے تو اس توبڑے کو اس کے سامنے سے ہٹا دیا، تو کل وہ کسی اور چیز سے بھدکے گا تو اس کو بھی ہٹانا پڑے گا، پرسو تمہارے بچے کو دیکھ کر بھدکے گا تو کیا بچے کو بھی گھر سے نکال دوں گی؟ وہ تو روز کی ایک مصیبت بن جائے گی. لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ گھوڑے کو اس چیز سے مانوس کر لو، مانوس کر لو. चुनाचे वो जो घोड़े को पालने वाले होते हैं, तो वो ऐसी चीज जिससे घोड़ा बिदकता है, तोबड़ा हो कुत्ता हो जो भी, बार बार उसके सामने लेकर जाएगा, जिसके नतीजे में वो आहिस्ता आहिस्ता उस तोबड़े से मानुस हो जाएगा, और मानुस होने के नतीजे में फिर नहीं बिकेगा। तो हमको भी यही कहा कि तुम शोर से मानुस हो जाओ, बच्चों के शोर शकब से उससे मानुस हो जाओ, फिर क्या करोगे तुम। या कभी कभी बाहर का वो होता है म्यूजिक, तो उससे मानुस हो जाओ। कभी कभी गाड़ी में भी होता है, कहीं मेटाटो में बैठे होते हैं और कई बस में सफर कर रहे होते हैं, अब किसी ने म्यूजिक चालू कर दिया, वो चालू कर दिया, तो उसमें भी ये सब चीजें आ जाती है कि तुम क्या करो, तुम अपना काम करते रहो, मानुस कर लो नफ्स को, इसलिए कि सफर तो आइंदा भी करना पड़ेगा। तुम कितना ड्राइवर को जाकर रोकोगे, वो थोड़ी रुकेगा, 5 मिनट के तो रोक देगा, अब पूरे सफर के लिए थोड़ी बंद करेगा। तो उसके अपने आप को ऐसा मानुस कर देना चाहिए कि ये अपना काम करता रहे, हम अपना काम करता रहे। जी, बहुत अजीब बात बताए। तो ये इसलिए हजरत वाला फरमा रहे कि जब उसी घर में तुम्हें रहना है मुस्तकिल तौर पर, तुम उस घर से भाग नहीं सकते, तो इस नफ्स को उसी शोर और शगब में जिक्र करने का आदि बनाओ। जी, अगर उसी हालत में जिक्र करने से यकसुई मैसर आ जाए तो अल्लाह की नेमत है, और अगर यकसुई मैसर ना आए तो भी कोई मुजायका नहीं, कोई हरज हरज नहीं है, समझे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर यकसुई आने लगेगी और इंसान का नफ्स उसी का आदी बन जाएगा। देखो, ये तो जिक्र के बारे में, लेकिन इसके अंदर सब चीज आ गई। हमें अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा, किसी के कोई मिजाज होता है तो फिर उसको मुआफिक कर लो, तो उससे काम निकल जाएगा, वरना कब तक तुम वो करोगे। तो खुलासा यह है कि दिल जमी और इत्मीनान हासिल करने के लिए कोई गैर मामूली रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं, बल्कि गैर मामूली रास्ता इख्तियार करना मुजीर है, मुजीर। अपने मामूल की जिंदगी में यकसुई हासिल करने के लिए जितनी थोड़ी बहुत फिक्र कर सकते हो कर लो, जैसे मैंने अभी बताया कि घर के जिस हिस्से में शोर शगब ज्यादा है उसको छोड़ दो, और जिस हिस्से में शोर व शगब कम है वहां बैठकर जिक्र कर लो, लेकिन घर को छोड़कर न भागो। ये सब तजरबे, हिकमत और दानाई की बातें हैं। जी, उधर तो फरमाया, देखो, ये सब हिकमत और दानाई की बातें हैं। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह तो इतने मराहिल से खुद भी गुजरे हुए थे और दूसरों को भी उन मराहिल से गुजारा हुआ था, न जाने सैकड़ों बल्कि हजारों को उन मराहिल से गुजार दिया, इसलिए ये बातें उनके तजर्बात का निचोड़ है, वरना ये बातें सालहा साल परेशान होने के बाद हासिल होती है, लेकिन हजरत वाला ने दो चार लफ्जों में चुटकुले बता दिए। हजरत थानी क्या अजीब बताया। तो इंसान को लिए कोई चीज माने नहीं, अपने आप को सेट कर ले, ये बात बताना चाह रहे। जी, तो मिजाज मैच खा जाएगा, चल जाएगा। अल्लाह, बहरहाल जिक्र बजाते खुद मकसूद है, जिक्र बजाते खुद मकसूद है। जिक्र में इस बात की फिक्र करना कि इसमें यकसुई है या नहीं, उसकी बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत फिक्र कर लेने में कोई हर्ज नहीं। चुनाचे एक शख्स ने हजरत वाला को लिखा कि मुझे जिक्र में यकसुई नहीं होती, तो जवाब में हजरत ने फरमाया, चाहे यकसुई बकदर एक सुई न हो, चाहे यक सुई बकद्र एक सुई न हो, समझे, सुनो, चाहे यक सुई बकद्र एक सुई न हो, तब भी जिक्र फायदे से खाली नहीं। यकसुई पहला यानी वो ध्यान, और दूसरा एक सुई यानी एक सुई के बराबर भी, यानी थोड़ा सा भी एक सुई के बराबर, समझे? तो ये भी एक सुई है और वो एक सुई, ये यक सुई वो एक सुई, अरे समझे? चाहे यक सुई बकदरे एक सुई न हो, तब भी जिक्र फायदे से खाली नहीं जी। लिहाजा इस फिक्र में मत पड़ो कि यक सुई हासिल है या नहीं, अरे जिस जात का जिक्र जबान से जारी हो रहा है, उसके अनवार व बरकात, उसके फायदे इंशाअल्लाह हासिल होंगे, और फिर रफ्ता रफ्ता यकसुई भी हासिल हो जाएगी। हजरत वाला ने इरशाद फरमाया जी, हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, अब दूसरा मलफूज है, ज्यादा कुर्ब ला इलाहा इल्लल्लाह में है, ज्यादा कुर्ब ला इलाहा इल्लल्लाह में है कि ये मासूर है, और दूसरे अस्कार इल्लल्लाह इल्लल्लाह या अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ये एक एक जिक्र तो ला इलाहा इल्लल्लाह और एक इल्लल्लाह है, एक अल्लाहु अल्लाह है, तो मसलिहत यकसुई के लिए तजवीज होती है, ये सब यकसुई के लिए तजवीज होते हैं। वाकई तजरबे से जिक्र मासूर औफक बित्तबाए है, और इसलिए अनफा भी है, लेकिन ये मासूर जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ज्यादा मतलब उसमें यकसुई होती है और ज्यादा नफा देने वाला होता है। इल्लल्लाह की तस्वीर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस शरीफ में भी है कि अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और हजरत वाला ये मलफूज 12 तस्बीह, जो 12 तस्बीह के सियाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि 12 तस्बीह में पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है, और उसके बाद फिर इल्लल्लाह की तस्बीह होती है, फिर उसके बाद अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है, फिर अल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ी जाती है। तो देखा, पहले इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाहु अल्लाह, फिर अल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ी जाती है। इन तमाम तस्बीहात में कुर्ब सबसे ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह से हासिल होता है, इसलिए कि ये जिक्र मासूर है, और वो दूसरे अस्कार यानी इल्लल्लाह या अल्लाहु अल्लाह वगैरह, ये मसलिहत यकसुई की खातिर तजवीज किए गए हैं। बाकी तजरबे से बात साबित है, जिक्र मासूर औफक बित्तबाए है, क्योंकि ये मासूर जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हदीस से साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो ये है, इसलिए इसको मासूर कहते हैं। यानी जो अस्का नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, या आपका उस जिक्र को करना या दूसरों को बताना साबित है, वो जिक्र जितना मुफीद होता है वो तबीयत के मुआफिक होता है, दूसरा जिक्र नहीं होता, इसलिए ऐसा जिक्र मुफीद भी ज्यादा होता है। और जो मसनून जिक्र होता है उसमें नूर और बरकत भी होती है। जितने वजाइफ और औरात और मामूलात वगैरह है, उनमें से जो सुन्नत के करीब है और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उनमें जो नूर और बरकत है और उनमें जो नफा है, और दूसरे अस्कार और औराद में नहीं, वो दूसरे अस्कार और औराद में नहीं। वैसे तो बुजुर्गों से बहुत से औराद अस्कार साबित है, उन अस्कार के अपने खवास भी है जिनके जिनसे इनकार नहीं हो सकता, न औराद को नाजायज और बुरा कह सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत का नूर मासूर अजकार में हासिल होता है, वो दूसरे अजकार में हासिल नहीं होता, याद रख सुन्नत जी। और सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मशाइख का अस्कार जो होता है सुन्नत के मुताबिक ही होते हैं, फिर उसमें कुछ और जायद होते हैं। देखो दावत तो तबलीग के अंदर भी फरमाया अहयाए सुन्ना है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, भाई तुम्हारे इस काम से क्या मकसद है? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मिट चुकी है उसको दोबारा जिंदा हो जाए, जिन सुन्नतों को जिंदा करना। और वाकईतन वो सुन्नत जिंदा हो गई, वरना बिल्कुल उम्मत एक दूसरे से अजनबी हो गए थे। दावत और तबलीग की बरकत से एक दूसरे को पहचानने वाले बने, मदद करने वाले बने, तो ये सुन्नत जिंदा। बाज लोगों की तबीयत, बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तबीयत मासूर असकार में नहीं लगती, सुन्नत असकार में नहीं लगती, इसलिए वो इधर उधर के दूसरे असकार के चक्कर में लगे रहते हैं। बाज दुरूद लखी होता है ना किताबों में, दुरूद लखी, और बाज दुरूद ताज में, और बाज दुआए गंजुल अर्श वगैरह में लगे रहते हैं। अब देखो ये सारे मासूर सुन्नत नहीं। और ये है जो दो दुआओं की किताबों के अंदर दुआए दुरूद लखी है, दुरूद ताज है, दुआए गंजुल अर्श है वगैरह में लगे रहते, उनकी तरफ उनकी तबीयत बहुत माइल होती है, और असकारे मासूरा की तरफ उनकी तबीयत मुतवज्जे नहीं होती, उनकी तबीयत मुतवज्जे नहीं होती। हालांकि ये गैर मासूर असकार है, उनमें से बाज में तो खिलाफ शरा उमूर होते हैं, ये जो बताया ना खिलाफ शरा उमूर होते हैं, हालांकि गैर मासूर असकार है, उनमें से बाज में तो खिलाफ शरा उमूर होते हैं, अलबत्ता बाज में खिलाफ शरा उमूर नहीं होते। मसलन हिजबुल बहर है, उसमें कोई खिलाफ शरा अम्र नहीं है, और बुजुर्गों का उसको पढ़ने का मामूल रहा है, लेकिन जो नूर अदिया मासूरा में है यानी सुन्नत दुआओं में है, यानी जो अदिया मासूरा कुरान करीम से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उनसे बेहतर दुआ कोई नहीं हो सकती। उनमें जो नूर और जो बरकत जो नफा है वो दूसरे असकार में नहीं है। वाकया यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ मांग कर तशरीफ ले गए, दुनिया और आखिरत की कोई जरूरत, कोई हाजत, कोई नफा की चीज ऐसी नहीं है जो इन दुआए मासूरा में ना आ गई हो, इसलिए इन दुआओं मासूरा से, अदईया मासूरा से बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? अगर दिन रात आदमी उन्हीं दुआओं के पढ़ने का मामूल बना ले तो बस यही काफी है। यही मामला जिक्र का है, जो अस्कार मासूर है उनमें जो नूर जो बरकत जो नफा है दूसरे अस्कार में नहीं। अल्लाह अकबर, देखो सुन्नत पर ला रहे हैं, सुन्नत पर ला रहे हैं, वाकईतन उम्मत सुन्नत से हट गई। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का मुख्तसर रास्ता इत्तिबाए सुन्नत है। शॉर्टकट रास्ता क्या है? इत्तिबाए सुन्नत है। बड़े बड़े अस्कार और जो इधर उधर की है वो सुन्नत से नहीं है, तो उसमें नूर और बरकत कम है, तो शॉर्टकट जो है मुख्तसर रास्ता वो है सुन्नत का रास्ता। हाँ नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो ये है, तो अल्लाह के रसूल साहब सब कुछ मांग कर गए, अगर दिन रात आदमी उन्हीं दुआओं के पढ़ने का मामूल बना ले तो बस यही काफी। यही मामला जिक्र का है, जो असकार मासूर है उनमें जो नूर और बरकत जो नफा है वो दूसरे असकार में नहीं। इत्तिबाए सुन्नत का रास्ता ज्यादा मुख्तसर है जी, सूफियाए किराम के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, किसी सिलसिले में कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है, किसी सिलसिले में कोई तरीका इख्तियार किया जाता है, सबका मकसूद वसूल इलल्लाह है और ताल्लुक मा अल्लाह कायम करना है। क्यों जी? सबका मकसूद वसूल इलल्लाह और ताल्लुक मा अल्लाह कायम करना है, लेकिन रास्ते अलग अलग है, कोई रास्ता मुख्तसर है और कोई लंबा है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने तो ये देखा कि अल्लाह तक पहुंचाने में जितना मुख्तसर रास्ता इत्तिबाए सुन्नत का है, कोई और रास्ता इतना मुख्तसर नहीं। जी इतना कोई मुख्तसर रास्ता, जो दूसरे रास्ते मुजाहदात, मुराकबात, रियाजते, अशगाल, औराद के जो सूफियाई किराम ने तजवीज किए हैं उनके नाफे होने से इनकार नहीं, और न ही उनकी तनकीस मकसूद है। याद रखे, उसकी तनकीस नुक्स निकालना मकसूद नहीं है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचाने में जितना जोर, जूद असर, जल्दी असर करना इत्तेबाए सुन्नत का रास्ता है, कोई और रास्ता इतना जूद असर नहीं है, जल्दी असर करने वाला नहीं। वाकई ला शक फी। हाँ, वजह क्या है कि इत्तिबाए सुन्नत में महबूबियत की शान है। वजह उसकी यह है कि इत्तिबाए सुन्नत में महबूबियत की शान पाई जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह। महबूबियत की शान, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो इत्तिबाए सुन्नत में क्या है, महबूबियत की शान है, अल्लाह महबूब बना देते हैं, मोहब्बत करते हैं। इस आयत से पता चला कि इत्तिबाए सुन्नत करने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। ये बात तयशुदा और मनसूस है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करेगा उसमें महबूबियत की शान पैदा हो जाएगी। और महबूबियत की खासियत क्या है, महबूबियत की खासियत क्या है, जज्ब है, जज्ब, खींचना, समझे, यानी मुहिब महबूब के लिए जाजिब होता है, मुहिब महबूब के लिए जाजिब होता है, इसके अंदर खींचना, जज्ब करने की सलाहियत होती है। मुहिब महबूब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। हमारा महबूब अल्लाह है और हम मुहिब मोहब्बत करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला को अपनी तरफ खींचने या अल्लाह हमको अपनी तरफ खींच रहा है, तो मुहिब और महबूब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसलिए जो शख्स इत्तिबाए सुन्नत का काम करेगा वो अल्लाह ताला का महबूब बनेगा, महबूब बनेगा अल्लाह का, अल्लाह मुहिब और हम महबूब, फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। ये जज्बा का तरीका, ये जज्ब का तरीका जल्द मंजिल पर पहुंचा देता है। इसको कहते हैं ना, लिफ्ट में बैठकर मंजिल पर पहुंचो और एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पहुंचो, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाओगे तो टाइम लगेगा, हो सकता है थककर बैठ भी जाओ, और लिफ्ट में जाओगे तो सीधा पहुंच जाएंगे। तो ये जज्ब जो है, मुख्तसर रास्ता ऐसा है कि सीधा बैठो और अल्लाह खींच लेगा तो पहुंच जाओगे, भटकने का कोई 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 खतरा ही नहीं है। और अगर दूसरे रास्ते लिए जो सुन्नत से दूर है, अगरचे उसका इनकार नहीं है, लेकिन उसमें जाते जाते टाइम लगेगा और थक गए तो फिर मुश्किल भी होगा, क्योंकि इंसान के पास किसी में ताकत होती है, किसी में नहीं होती। तो इसलिए फरमाया, तो यह है जज्ब यानी खींचना। अब जाहिर बात है लिफ्ट क्या करती है, जज्ब तो करती है ना, ऊपर मोटर चालू हो जाती है, तुम्हें 5वें 50 मंजिले पर पहुंचा देती, तो इसको कहते हैं जज्ब। तो अल्लाह ताला जब इंसान सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, महबूब बन गया जी। तो जज्ब का तरीका जल्द मंजिल पर पहुंचा देता है। कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसको चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं। इत्तिबाए सुन्नत की लिफ्ट में बैठ जाओ फिर अल्लाह उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। लिहाजा इत्तिबाए सुन्नत में महबूबियत है और महबूबियत में जज्ब का खासा है, तो अल्लाह ताला इत्तिबाए सुन्नत करने वालों को जज्ब फरमा लेते हैं। इसके नतीजे में रास्ता जल्द कता हो जाता है, रास्ता जल्दी लपेट दिया जाता है। तो ये है। और सुन्नत का बहुत पहले हमने पढ़ लिया है, इंशाल्लाह आइंदा दोबारा, ताकि हम वही मुख्तसर रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अल्लाह वाला इख्तियार कर ले, तो सुन्नत के दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा हमें जज्बा पैदा होगा सुन्नत पर अमल करने का। हजरत वाला ने एक ही वाक्या लिखा है, एक बादशाह अपने किले की बुर्ज में बैठा था, नीचे से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इन बुजुर्ग से कुछ इस्तिफादा करना चाहिए। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इन बुजुर्ग से कुछ इस्तिफादा करना चाहिए, चुनाचे बादशाह ने उन बुजुर्ग को आवाज दे दी कि हजरत कुछ हमारी तरफ भी निगाह फरमा ले। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ कैसे निगाह डालू, तुम्हारी तरफ आने का कोई रास्ता ही नहीं है। कैसे निगाह डालू, तुम्हारी तरफ आने का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए कि इतने बड़े किले के चक्कर लगाकर दरवाजे तक पहुंचू, समझे ना, क्योंकि वो किला था बहुत बड़ा था। तो बोले पहले तो चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर दरवाजे तक पहुंचू, फिर दरवाजे पर चौक पहुंचूंगा तो चौकीदार और पहरेदार और अस्करी वहां पर खड़े होंगे, उनसे इजाजत लेकर अंदर आओ फिर तुम तक पहुंचू, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बादशाह ने कहा मेरे तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं, एक कहकर उसने ऊपर से एक टोकरी लटका दी, उसने फिर ऊपर से अपनी बिल्डिंग में से टोकरी लटका दी और बुजुर्ग से कहा कि आप उस टोकरी में बैठ जाए, वही लिफ्ट हो गई ना जो आज के जमाने में लिफ्ट हो गई, ऊपर से भेज दी जाती है भाई आप आ जाओ, तो 2 मिनट में हम ऊपर पहुंच गए, चाहे 50 मंजिला हो या 100 हो। तो फरमाया टोकरी में बैठ जाए, चुनाचे वो बुजुर्ग उस टोकरी में बैठ गए, बादशाह ने अपने खादिमों से वो टोकरी ऊपर खींचवा ली। तो देखो कितना आसान रास्ता हो गया, वही मिसाल आ गई। तो ऐसा ही है, आज दुनिया के भी जो बड़े बड़े मालदार होते हैं भाई, हमारे तक आने का बहुत आसान रास्ता, हम लिफ्ट भेज देते हैं उनके ऊपर से, अपनी प्राइवेट होती है और भेज दिया, हम 2 मिनट में पहुंच गए। तो फरमाया अल्लाह तक पहुंचने का तरीका, जब वो बुजुर्ग ऊपर पहुंचे तो उन्होंने बादशाह से फरमाया कि अब बताइए क्या बात है। तो उस बादशाह ने कहा मुझे ये बताएं कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। लो उस बादशाह ने क्या पूछा, कि आप मुझे बताइए कि इस अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पास इस तरह पहुंच जाओ जैसे मैं तुम्हारे पास पहुंच गया, क्योंकि तो मिसाल तो सामने थी। क्या इस तरह पहुंच जाओ जैसे मैं तुम्हारे पास पहुंच गया, तुमने पुकारा मैंने उजर जाहिर किया, कितना लंबा चौड़ा रास्ता कत्ता करके कैसे आओ, तो तुमने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ तक आना चाहता है वो मुझे पुकारे और ये कहे कि अल्लाह मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी तरफ खींच लेते। अल्लाह से पुकारो ना, क्या बात है, अल्लाह ताला से पुकारो जैसे मैंने पुकारा कि आप तक आने का रास्ता, तो अल्लाह तक आने का रास्ता भी अल्लाह से पुकारो, कि है तो बड़ा मुश्किल है लेकिन अल्लाह से करो, अल्लाह आपके तक आने का रास्ता हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप कोई मुख्तसर रास्ता पर अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर अल्लाह ताला मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, तो फिर अल्लाह ताला खींच लेंगे। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आयत अल्लाहु यजतबी इलैही मन यशा के जाहिरी माना तो यह है कि अल्लाह अपनी तरफ खींच लेते हैं जिसको चाहते, इसलिए कि यशा की जमीर अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है। लेकिन इस आयत में एक एहतिमाल यह भी है कि यशा की जमीर मन की तरफ लौट रही है, मन मन यशा यानी जो शख्स इरादा करे, समझे, मन की तरफ लौट रही है। इस सूरत में उसके माना ये होंगे कि अल्लाह ताला उस शख्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं जो ये चाहे कि उसे खींच लिया जाए। सुभान अल्लाह, देखो एक तर्जुमा ये है, जो ये चाहे कि उसे खींच लिया जाए तो अल्लाह उसको खींच लेते। और पहला तर्जुमा क्या था कि अल्लाह जिसको चाहते हैं खींच लेते, तो जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है कि अल्लाह जिसको चाहे खींच ले। और यहां पर दूसरा तर्जमा क्या फरमा रहे कि फरमाया जो ये चाहे कि उसे खींच लिया जाए, तो अल्लाह उसको अपनी तरफ खींच लेते, बंदा जो इरादा करे तो अल्लाह उसको खींच लेते। वहां पर अल्लाह का इरादा था, यहां पर बंदे का इरादा है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊं, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला को पुकारे और अल्लाह ताला से उसका कुर्ब मांगे, तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये कलंदरी का रास्ता है। कलंदर, कलंदर का बताया था ना पिछले किस्से में क्या था? हाँ, कलंदर, चार चीजों का एहतमाम कर लो तो कलंदर बन जाओगे। पता था, एक तो जो नेमतें है उस पर शुक्र करो, जो तबीयत के मुआफिक काम हो जाए तो उस पर शुक्र अदा करो, और जो तबीयत के खिलाफ काम हो तो उस पर सबर करो जी। और तीसरी चीज, जो गुनाह हो गए उस पर इस्तिगफार करो, और आइंदा अल्लाह से इस्तआज़ा पना मांगो, और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से बातें करते, अल्लाह खींच ले मुझे भी, समझे? तो अल्लाह खींच लेगा। लिहाजा ये खींचने का रास्ता मुख्तसर तरीन रास्ता है। इसके मुकाबले में मुजाहदात, रियाजतों का जो रास्ता है वो दूर का रास्ता है, दूर का। मुजाहदों का रास्ता दूर का रास्ता है। फारसी का मशहूर शेर है, जमारा कलंदर सजावार बमन नुमाई, जमारा कलंदर सजावार बबन नुमाई, के दराजो दू दर दराजो दूर दीदम रा व रसम पारसाई, दराजो दूर दीदम रा व रसम पारसाई। ये फारसी है, यानी मुजाहदात और रियाजतों का जो रास्ता है, जमारा कलंदर सजावार बमन नुमाई, यानी मुजाहदात और रियाजतों का जो रास्ता है, ये तो लंबा चौड़ा रास्ता है जो मेरे बस का नहीं। मुझे तो कलंदर वाला रास्ता बताइए। कलंदर वाले रास्ते से मुराद मोहब्बत का रास्ता है, इत्तिबाई सुन्नत वाला रास्ता है। इस इत्तिबाई सुन्नत के जरिए जब मोहब्बत पैदा होगी, तो मोहब्बत इंसान के अंदर स्टीम भर देगी जी, स्टीम भर देगी, फिर वो स्टीम उसको तेजी से रास्ता कता कर देगी। हाँ जी, मोहब्बत भर देगी। देखिए, रेल का इंजन है ना, जो फौलाद का है, बहुत भारी है, लेकिन जब उसके अंदर स्टीम भर दी, रेल जो चलती है ना, तो उसमें स्टीम होते हैं ना पानी से, और उसमें एक स्टीम भर दी, तो अब वो इंजन खुद भी तेजी से दौड़ता है और पूरी गाड़ी को भी दौड़ाता हुआ ले जाता है। तो जब ये मोहब्बत इंसान के अंदर है ना, एक स्टीम भर देगी, एक अंदर की गर्मी भर देगी, तो खुद भी चलेगा तेजी से और दूसरों को भी लेके चल देगा जी। इसी तरह अगर अल्लाह ताला दिल के अंदर मोहब्बत की स्टीम भर दे, तो फिर रास्ता बहुत तेजी से कता हो जाएगा जी। इत्तिबाए सुन्नत वाला रास्ता खामोशी वाला रास्ता है, और वाकईतन इत्तिबाए सुन्नत के अंदर कभी भी कब किब्र नहीं आएगा। हाँ, इसलिए याद रखो, सुन्नत पर चलना बड़ा मुश्किल है नफ्स के लिए। इसीलिए देखो, नफ्स, उन्होंने बताया ना कि इंसान दूसरे दूसरे असकार पसंद करेगा, जिस सुन्नत से ज्यादा करीब होगा तो उसमें उसको मजा ही नहीं आता। इसलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि इत्तिबाए सुन्नत का रास्ता करीब का रास्ता है जी, और जल्दी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और अभी तो उम्र भी थोड़ी है, वक्त भी थोड़ा है, तो अभी हमें लंबा रास्ता लेना भी नहीं चाहिए। इतना मुख्तसर रास्ता लोग जल्दी से पहुंच जावे, हाँ, क्योंकि वक्त कम है। अलबत्ता इस रास्ते में शोरो शगब भी नहीं, हाँ, जिसकी वजह से देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये शख्स कोई लंबा चौड़ा रास्ता कतार कर रहा है। मसलन अगर कोई शख्स बैठा जिक्र शुगर में मसरूफ है, समझे ना, जरा जोर जोर से जरबे लगा रहा हो और कुछ भी कर रहा हो, या मुराकबा कर रहा है, या चिल्ला काट रहा है, तो देखने वाले को भी पता चल जाता है कि ये कुछ कर रहा है। देखने वाले को पता चल जाता है ये कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो कलंदर वाला रास्ता है ना, इत्तिबाए सुन्नत वाला रास्ता है, उसमें देखने वाले को पता ही नहीं चलता है कि उसने कोई अमल किया है। जैसे बताया था ना, मुब्तदी और मुंतही, ये लफ्ज याद रखो जरा, कि मुब्तदी और मुंतही दोनों का अमल एक जैसा है, तो वो कलंदर है जो अंदर अंदर तय कर रहा है, इत्तिबाए सुन्नत की जिंदगी उसके अंदर आ गई है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, तो ये कलंदर है। खामोशी है ना उसमें, पता नहीं चलता ना किसी को। तो वो कह रहा, तो दर फरमाया देखो, तो ये जो कलंदर वास्ता रास्ता है, इत्तिबाए सुन्नत वाला रास्ता है, उसमें देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसने कोई अमल किया है। मसलन एक शख्स ने मस्जिद से निकलते वक्त बायां पाव बाहर निकाल दिया, तो अब किसी को क्या पता चला कि उसने क्या अमल किया, लेकिन इत्तिबाए सुन्नत के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो गया। अब बताओ उसमें कौन सा तकबर आएगा। अब बाएं दाएं पैर से दाखिल हुआ, बाएं पैर से निकला, इत्तिबाए सुन्नत हुई। अब बताओ ये इतना खामोश अमल है, उससे किसको क्या पता चलेगा, लेकिन ये अल्लाह तक पहुंच गया इत्तिबाए सुन्नत की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजीब। देखो अब ऐसे टॉयलेट में कोई गया, लेफ्ट पैर से दुआ पढ़ के गया, बाहर आया, दुआ पढ़ी, अभी अमल हो गया, अब इससे कोई तकबर आएगा? ये इत्तिबाए सुन्नत हो, और कितना खामोश कि किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या किया। वो तो बोला अंदर जाकर टॉयलेट में जाकर आ गया, हालांकि ये जाकर आने में अल्लाह का कुर्ब उसको मिल गया, महबूबियत मिल गई। टॉयलेट में जाकर सिर्फ बाहर आने पर महबूबियत मिल गई, मेरे आका मेरे मदनी के तरीके पर गया। तो फरमाया अल्लाह ताला कुर्ब हासिल है। जो और हवा का झोंका आया और उस पर आपने दिल में कह दिया अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वलकल शुक्र, अब किसी को पता भी नहीं चला कि क्या से क्या हो गया और कहां से कहां पहुंच गई। एक लम्हे में अल्लाह ताला की अहम इबादत अंजाम पा गई, और वो है शुक्र की इबादत। अब बताओ कितनी बड़ी इबादत होगी, कितना खामोश इत्तिबाए सुन्नत में शुक्र अदा कर दिया। सुभान, देखो कैसी मिसाल दे रहे, इत्तिबाए सुन्नत खामोश रास्ता है, कुछ पता नहीं। और आजकल तबीयत का शोर शगफ हो, जरा जरा गाना हो, नात हो, है कि नहीं? अब ईदी मिलाद चल रही है ना, बोले क्या रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं ना, तो जगह जगह पर है ना शोर हो रहा है, पता नहीं जमा हो रहे हैं, कुछ शोर कर रहे हैं, कुछ नाते पढ़ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे, सब शोर वाला रास्ता है, तो लोगों लगता है कुछ करना है। हकीकत में इत्तिबाए सुन्नत तो यह है कि खामोश रास्ता है, ये सुन्नत का रास्ता नहीं है। लोगों को बेचारों को धोखा लग गया है कि हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये तो आम पब्लिक भी करते हैं, आप चर्च में जाओ तो वहां पर शोर, मंदिरों में जाओ तो वहां शोर हो रहा है, अब हमारे पास भी शोर हो रहा है। तो हमारा रास्ता ऐसा है किसी को तकलीफ न पहुंचे और अल्लाह तक पहुंच जाओ। इसलिए ये गलत फहमी हो गई है, कहा हम जरा शोर मचाएंगे तो ज्यादा कुर्ब मिलेगा। याद रखे हमारे नबी की सुन्नत में कोई शोर है ही नहीं, ये देखो खामोश सुन्नत है। आपने दिल में हमारे नबी पर दुरूद भेज दो, पहुंच जाएगा। अब खड़े होकर और इस तरफ करके और जरा सब मिलकर और कुछ मखसूस अल्फाज के साथ में, जो सुन रहे हो तो बुरा नहीं लगा ना, मैं तो बता रहा हूं सुन्नत, ये सुन्नत में नहीं, ये सुन्नत से हटा हुआ रास्ता है। ये समझ रहे हो कि इससे ज्यादा कुर्ब मिलेगा, तो ये तो चीज गलत है। कुर्बतों का रास्ता यही है कि जहां इंसान सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे, जमा हो रहे बेपर्दा, बेपर्दा कौन सी चीज है, तो कहां से हमारे नबी खुश हो जाएंगे। फिर आवाज औरत की पर्दा होती है और फिर जोर जोर से सब लोग सुन रहे हैं, तो कहां से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। ये सब धोखा है, ये सब जहालत है। हाँ जी, बहरहाल इत्तिबाए सुन्नत का रास्ता, 49 हो गया, चलो इंशाल्लाह दूसरा कल करेंगे। इंशाल्लाह दूसरा कल करेंगे। बहुत अजीब बातें हैं, इत्तिबाई सुन्नत, इत्तिबाई सुन्नत याद रखना। तो बात क्या हुई असल मुख्तसर, कि अल्लाह तक पहुंचने का मुख्तसर रास्ता क्या है? इत्तिबाई सुन्नत। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह तक जाने के जितने मखलूक के सांस है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन सबसे मुख्तसर रास्ता ये है। और आपको बार बार कहता रहा, अल्लाह तक पहुंचना शुक्र के रास्ते से भी जा सकते हैं, सब्र के रास्ते से भी जा सकते हैं जी, इबादत के रास्ते से भी जा सकते हैं। ये सारे शुक्र और सब्र भी इबादत है। आज हमने उसको इबादत समझा ही नहीं, नमाज पढ़े तो इबादत है, और नमाज नहीं पढ़ी तो बोले इसमें इबादत क्या की हमने। ये एक आम फहम है कि नमाज को, कुछ रोजे रखने को इबादत समझ लिया है, शुक्र और सब्र भी इबादत है, इसको इबादत ही नहीं समझा। बोले शुक्र और सब्र में क्या होगा? कुछ भी नहीं। अरे इतना जबरदस्त कुर्ब मिलेगा, नमाज वाला रास्ता भी है, लेकिन वो रास्ता इतना मुख्तसर नहीं है जितना के सब्र और शुक्र वाला रास्ता है, इत्तिबाई सुन्नत वाला रास्ता। कि देखो एक इंसान टॉयलेट जाकर आ रहा है और अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है, महबूबियत मिल रही है, सुभान अल्लाह, फिर उसको आगे इबादत पर क्या क्या मिलेगा जी। मुराकबा कर ले थोड़ी देर।